जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिथाय 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 जय गौरनिथाय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जयश्वाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य अष्टोत्तर शत हिज वैन ग्रेस अमेषण अरविंद भक्तिवेदांत संशुरपात की इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य शुरुपात की जयश्पात परमहंस प्रभु जी का आचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की द्वारकापुरी धाम की गंगा यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की कलयुग पवन हरिनाम संकीर्तन की जय निथाय गौर प्रेमानंदी सामवेद भक्तवृंद की सामवेद भक्तवृंद की सामवेद भक्तवृंद की जय श्री श्री गुरु और गौरांग की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जायोदिरहे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हरे कृष्णा, तो आज सुबह हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय क्रमांक 21 श्लोक क्रमांक 33 तमेव यूयं भजतात्म वृद्धिभिः तमेव यूयं भजतात्म वृद्धिभिः मनोवच काय गुण स्वकर्म भी मनोवच काय गुण सर्वकर्म भी अमानीय कर्म दुर्घर्णानि पंकजम् अमानीय कर्म दुर्घ्राही पंकजम् यथाधिकारा विस्तारथ सिद्धया यथाधिकार विस्तार सिद्धया तमेव यूयं भजतात्म वृद्धिभिः मनोवच काय गुणैः स्वकर्मभिः अमायिनः काम दुःखाग्रही पंकजम् यथा अधिकार विस्तार सिद्धया तमेव यूयं भजतात्म वृत्तिभिः मनोवचकाय गुणै स्वकर्मभि अमायिन काम दुघांग्रहि पंकजं यथाधिकार विस्तार सिद्धय और कोई चल माता जी तमेव यूयं भजता आत्मवृत्ति भी मनोवच काय गुण सर्व कर्म भी अमायिन काम दुर्गांग्रहि पंकजं यथाधिकार विस्तार सिद्धय तमेव यूयं भजतां वृत्तिवीर मनोवच काय गुणे सर्व कर्म भी नाम दुग्धांग्रि पंकजं यथाधिकार विस्तार्थ सिद्धय तमा उनको एव निश्चय ही यूयम तुम समस्त नागरिक भजत पूजा करो आत्मा अपना वृत्ति भी वृत्ति पर कार्य द्वारा मनः मन वचः वाणी काय शरीर गुणे विशिष्ट गुणों द्वारा स्वकर्म भी अपने अपने कर्मों से अमायिन बिना हिचक काम दुध समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते करने वाले अंग्रही पूजयम चरण कमल की यथा जिस प्रकार अधिकार सामर्थ्य अवसित अर्थ अपने हित के विषय में पूरी तरह आश्वस्त सिद्धय तुष्टि अनुवाद तथा तात्पर्य शिला ऐसी भक्तिवेदांत संस्रूपा की तात्पर्य सॉरी अनुवाद पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया तुम सबों को अपने मन वचन देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुम सब अपनी सामर्थ्य तथा वृत्तिपरक कार्यों से कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के श्री भगवान के चरण कमल की सेवा में संलग्न रहे, तब तुम्हें निश्चय ही अपने अपने जीवन उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता में 18वें अध्याय में कहा गया है, सर्व कर्मणा तमेहर्षम मनुष्य मनुष्य को अपने वृत्त परक कार्यों द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए करनी होती है। इसे चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ता है। अतः पृथु महाराज कहते हैं गुणे स्वकर्म भी, इस पदंश का व्याख्या भगवद गीता में इस प्रकार प्राप्त है, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। श्री भगवान द्वारा प्रकृति के गुणों तथा उन गुणों के अंतर्गत विशिष्ट कर्तव्य के अनुसार चारों जातियां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र बनाई गई। जो व्यक्ति सतोगुणी होता है वह निश्चित रूप से अन्यों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होता है। अतः यह ब्राह्मण के कार्य सत्य बोलना, इंद्रिय के संयम, मन का संयम, स्वच्छता, सहिष्णुता, आत्मज्ञान तथा भक्ति का ज्ञान कर सकता है। इस प्रकार यदि वह सच्चे ब्राह्मण की भांति भगवान की सेवा करता है तो उसके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय के कर्तव्य है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, दान देना, राजकाज में वैदिक व्यवस्था का पालन तथा यदि शत्रु आक्रमण करे तो निर्भीक होकर लड़ना। इस प्रकार एक क्षत्रिय अपने कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इसी तरह वैश्य अपने कर्मों को करता हुआ अन्न उगाना, गौओं की सुरक्षा करके तथा अधिक कृषि उत्पादन होने पर आवश्यक व्यापार द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकता है। क्योंकि शूद्रों के अधिक बुद्धि नहीं होती है, शूद्रों को अधिक बुद्धि नहीं होती, अतः उन्हें सामाजिक जीवन के उच्चतर स्तरों की सेवा करने में श्रमिक की भांति लगे रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य श्री भगवान को अपने मन, वचन, कर्म से प्रसन्न करना होना चाहिए। जिस प्रकार शरीर के चार विभाग है, सर, हाथ, पेट तथा पांव, उसी प्रकार मानव समाज भी मनुष्य के गुणों तथा कर्मों के अनुसार चार श्रेणियां में बटा हुआ है। इस तरह ब्राह्मणों को सिर का, क्षत्रियों को भुजाओं का, वैश्यों को पेट का तथा शूद्रों को पैरों का कार्य करना पड़ता है। जीवन के निर्दिष्ट कर्मों को करते समय न कोई छोटा है न कोई बड़ा। हाँ, इसमें उच्चतर तथा निम्नतर जैसे विभाग होते हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र स्वार्थ होने से उनमें कोई अंतर नहीं होता। यहाँ प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब ब्रह्मा, शिव तथा अन्य बड़े बड़े देवता भगवान की पूजा करते हैं तो फिर इस लोक का सामान्य व्यक्ति उनकी सेवा किस प्रकार कर सकता है। इसकी व्याख्या पृथु महाराज ने यथा अधिकार शब्द के प्रयोग द्वारा की है, जिसका अर्थ है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि कोई निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य पूरा करता है तो वही पर्याप्त होगा। उसे न तो ब्रह्मा बनने की आवश्यकता है, न शिव, इंद्र, चैतन्य या रामानुजाचार्य, जिनकी सामर्थ्य हम सबों से निश्चय ही बहुत अधिक है। यहाँ तक कि गुणों के अनुसार सबसे नीच स्थित शूद्र भी वही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है यदि उसमें द्विधा न हो। यहाँ यह बताया गया है कि मनुष्य को स्पष्ट वक्ता तथा खुले दिमाग वाला अमानियत होना चाहिए। भक्त में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में निम्न स्तर पर स्थान होना कोई अयोग्यता नहीं है। इसके लिए एकमात्र योग्यता है कि वह निष्कपट हो तथा उसमें हिचक न हो। फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो अथवा शूद्र, तब वह गुरु के निर्देशन में अपना वृत्ति पूर्वक कर्म करता हुआ जीवन की उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता में 9वें अध्याय श्लोक क्रमांक 32 में भगवान ने स्वयं पुष्टि की है, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रो यान्ति पराम गतिम। चाहे कोई ब्राह्मण हो या कोई क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा पतित स्त्री, इससे कोई अंतर नहीं आता। यदि कोई शरीर, मन तथा बुद्धि से गंभीरता पूर्वक भक्ति में प्रवृत्त होना चाहता है तो वह अवश्य ही भगवान के धाम जाता है। भगवान के चरण कमलों को कामधुधांग्रही जम कहा गया है, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरी करने में समर्थ है। एक भक्त अपने इस जीवन में सुखी रहता है क्योंकि इस संसार में हमारी तो अनेक आवश्यकताएं हैं। किंतु भक्त की सारी आवश्यकताएं पूरी हुई रहती है और अंत में जब वह शरीर त्यागता है तो वह बिना किसी संदेह के भगवत धाम को जाता है। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज यहाँ जो श्लोक का उल्लेख हो रहा है तो प्रथम महाराज जो है यहाँ बता रहे कि भगवत धाम जाने के लिए हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी वर्ण का हो, तो हर एक व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है अगर एक व्यक्ति अपने शरीर मन और वाणी से पूरी तरह भगवान की सेवा में अगर तत्पर हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह यहाँ बताया है कि किस प्रकार इसमें कोई भक्ति में जो है कोई भेद नहीं होता है। हो सकता है कि वर्णाश्रम में भेद हो, एक क्षत्रिय का कार्य ब्राह्मण नहीं कर सकता है, ब्राह्मण का कार्य जो है वैश्य नहीं कर सकता है और वैश्य का कार्य जो है शूद्र नहीं कर सकता है, लेकिन ये भक्ति का जो कार्य है, क्योंकि भक्ति तीन गुणों से परे होने से इसमें कोई ये नहीं है ना, डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता नहीं है। तो यहाँ प्रथम महाराज जो है अपने प्रजाओं को बता रहे यथा योग्यता, यथा योग्यता के अनुसार जैसे हमारी योग्यता है। आप देखते हैं कि रामायण में जब जितनी वानर सेना लंका जाने के लिए जब वो एक पुल बना रहे थे तो उस वक्त जो है एक जो है गिलहरी वो क्या कर रही थी कि वो भी एक छोटा छोटा पत्थर डाल रही थी। तो उस समय आप देखते कि बड़े बड़े बंदर, हनुमान जी किम पुरुष लोक से है, तो हनुमान जी ने देखा रे ये गिलहरी कहीं पैर के नीचे पिचक जाएगी, तो उन्होंने कहा अरे बाजू हटो, नहीं देखते हम कितने बड़े हैं। तो राम भगवान वहीं थे तो राम भगवान ने कहा देखो वो यथा अपनी क्षमता के अनुसार अपनी योग्यता के अनुसार वो कार्य दे रही है और आप अपने साइज से कार्य दे रहे, ठीक है, लेकिन हम सबका सेवा जो है वो स्वीकार कर रहे। तो भगवान जो है हमें मालूम होना चाहिए कि भगवान भावग्रही जनार्दन है, तो भगवान ये नहीं देख रहे कि कौन व्यक्ति कैसे है। तो यहाँ प्रथु महाराज यही बताना चाहते हैं कि पहले प्रथु महाराज का यहाँ अनुवाद में उल्लेख आता है, प्रथु महाराज ने अपने प्रजाओं को उपदेश दिया तुम सबों को अपने मन वचन देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये प्रथु महाराज का पहला इंस्ट्रक्शन है। दूसरा वो बताते हैं कि सब अपनी अपनी सामर्थ्य तथा वृत्ति परक कर्मों के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हो सकता है, तब निश्चित रूप से एक व्यक्ति जो है सरलता प्राप्त करके भगवत धाम जा सकता है। तो यहाँ रूपा जी भगवद गीता के जो है उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति, 18वें अध्याय में 46 नंबर श्लोक है, उसको रूपा जी ने यहाँ कोट किया है, यथा प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वम इदम ततम। तो प्रवृत्ति आप लोग जानते हैं कि हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ गुण है। प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि चाहे मनुष्य हो या कोई जानवर है कि हर एक का गुण धर्म है, हर एक का गुण धर्म है, चाहे वो चीनी है या मिर्ची है नमक है, तो मनुष्य का भी गुण धर्म है कि भगवान की सेवा करना। तो यहाँ 18वें अध्याय में बताया गया है यथा प्रवृत्तिर भूतानाम, तो इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति अगर अपने प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करता है वो व्यक्ति भगवत धाम या भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो आप देखते हैं कि जब भी प्रभुपाद जी इसमें थे एक बार अमेरिका में, वहाँ जहाँ डेली क्लास चलता था तो एक व्यक्ति कभी कभी आते थे, वो दारू पी के आते थे, लेकिन किसी को परेशान नहीं करते थे, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर भी एक ऐसी सेवा की भावना थी। तो एक बार वो टिश्यू पेपर लेके आया, टिश्यू पेपर आप लोग जानते हैं जैसे विदेशी लोग टॉयलेट में रखते हैं, वो लोग पानी से ये नहीं करते, वो लोग टिश्यू पेपर यूज करते हैं। तो एक व्यक्ति टिश्यू पेपर के दो जो है दो ये लेके आया और चुपचाप बाथरूम में रख के चला गया। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे देखो हालांकि ये व्यक्ति अपने जो है अपना जो है जो भी वो अपना कार्य करता है जो भी करता है लेकिन उसके अंदर भी एक सेवा करने की भावना है, चाहे वो कोई भी निम्न स्तर का कार्य दे रहा है लेकिन उसके अंदर ये भावना है कार्य करने की। तो हमें भी मालूम होना चाहिए कि हर एक के व्यक्ति के अंदर एक प्रवृत्ति होती है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक हम एक गुरु का ये नहीं लेते आश्रय तो हमारी प्रवृत्ति क्या है वो हम समझ नहीं पाते। जैसे हर एक व्यक्ति को मैट्रिक एग्जाम देना पड़ता है तभी पता चलता है कि कौन डिस्टिंक्शन में है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। जब तक एग्जाम नहीं देगा पता नहीं चलेगा। तब तक तो आजकल तो 1 से 9 स्टैंडर्ड तक सबको पास कर देते हैं क्योंकि बच्चों को भी टेंशन होता है आजकल। तो यहां हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी का एक उल्लेख आता है। एक बार प्रभुपाद जी कहीं एक किसी के घर के कार्यक्रम में गए थे, एक बड़े धनी के घर में गए थे प्रोग्राम के लिए। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रसाद वैष्णव सेवा किया और प्रभुपाद जी उनके शिष्यों ने प्रसाद वगैरह प्राप्त कर लिया और जब वो घर वाले उन्होंने भी प्रसाद लिया तो उसके पश्चात प्रभुपाद जी ने एक ऐसी चीज उन्हें बताई। तो प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे थे हमें तो बिल्कुल धक्का लग गया। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा कि देखो आप अपना कार्य कर रहे वर्णाश्रम के अनुसार, अगर आपको भगवान के प्रति, आप सिर्फ साधु सेवा करने से कुछ फायदा नहीं, अगर अगर भगवान के प्रति आपके अंदर कुछ ये नहीं है, प्रेम भक्ति नहीं है, तो ये सेवा वगैरह करने का कुछ मतलब नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी जब ही, और एक बार उल्लेख आता है, जब ही अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो अपने शिष्यों को बता रहे थे देखो आपके लिए आपका पूर्व जन्म का पुण्य है कि आप लोगों के पास कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ प्रचुर मात्रा में है लेकिन आप लोग जो है भक्ति नहीं करते, वो पूरा एक शून्य है। आपके पास जो भी है, जितना भी धन संपत्ति जो भी है, ये सब शून्य है। जब तक भगवान को आप सामने नहीं रखोगे, जितने भी शून्य डालते जाओ सब वो उस शून्य के अंदर शून्य डाल दो, आपको शून्य मिलने वाला है, आगे जीरो ही होने वाला है। तो जब तक आप भगवान को बीच में नहीं रखोगे तो आपके पास जितना भी सुंदरता है, धन है, यश है, तो इनका कुछ अर्थ नहीं है। तो यहाँ पृथु महाराज जो है यही बताना चाहते हैं कि ये जो लोगों का, खास करके आजकल दुनिया में हम देखते हैं कि लोगों को धर्म अर्थ काम में, अर्थ और काम चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, मोक्ष तो भूल जाओ। तो यहाँ पृथु महाराज ये बता रहे कि किस प्रकार एक व्यक्ति को यानी भक्ति करनी चाहिए अपनी यानी भावना के अनुसार, यानी उसकी योग्यता के अनुसार हर एक व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, यशस्ति भक्तिर भगवती अकिंचनम। तो श्रीमद् भागवतम में देवता लोग कहते हैं कि इस भौतिक जगत में वो बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर तो अच्छे सद्गुण होते हैं लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है, हम मनोरथे नानी धावतो बही, इसका अर्थ है कि उसका मन सब जगह भागते रहता है, वो कहीं स्थिर नहीं रहता है क्योंकि उसका जो है मन भगवान के चरणों में केंद्रित नहीं है। जैसे अम्बरीश महाराज का उल्लेख आता है सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर, सबसे पहले उन्होंने अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगा दिया। तो यहां भी वहां पृथु महाराज बता रहे कि भगवान के जो चरण कमल है वो हमारी कोई भी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। भगवान के चरण कमल अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो पहले स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक भागवतम में कम से कम 18,000 श्लोक है। तो इसमें कम से कम 500 श्लोक तो 12 स्कंद में कम से कम 500 श्लोक तो भगवान के चरण कमलों का ही उल्लेख करते हैं अलग अलग प्रकार से। तो यहां पृथु महाराज बता रहे कि अगर एक व्यक्ति सिर्फ भगवान का चरणों का आश्रय लेता है तो उस व्यक्ति की सारी इच्छाएं जो है वो पूरी हो सकती है। तो जैसे भागवतम में भी, भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान बताते हैं 12वें अध्याय में कि उसमें अर्जुन को भगवान बता रहे यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होगे। तो भगवान के प्रति अगर कोई भी कार्य करता है तो वो व्यक्ति संपूर्ण जो है वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जैसे पुराण में एक कहानी आती है, तो एक बार नारद मुनि गए थे वैकुंठ लोक और विष्णु भगवान से कह रहे थे, अगर आपके कोई ऊंचे कोटि के भक्त है क्या, थोड़ा उनको उनका भी हम दर्शन करना चाहते हैं। तो फिर विष्णु भगवान ने कहा, हाँ एक 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 किसान है, एक गांव में रहते हैं। तो उनका एड्रेस ले लिया नारद मुनि ने। फिर उस गांव में आए तो नारद मुनि यही जांच करना चाहते थे कि ये व्यक्ति किस तक हद तक भगवान की सेवा करता है 24 घंटे में। तो इस किसान के घर में गए तो किसान ने उनका अच्छा अतिथि सत्कार किया। फिर नारद मुनि ने कहा कि आपके घर में हम 2-3 दिन रहेंगे। तो उन्होंने कहा, अरे आपका ही घर है, आप रहो। तो नारद मुनि जांच कर रहे थे कि किसान कब कब भगवान का नाम लेता है। तो नारद मुनि देख रहे थे कि सुबह उठने के बाद वो किसान भगवान का नाम लेता है, फिर मंदिर जाता है थोड़ा नाम लेता है, फिर खेती में जाता है आके अपना भोजन ले लेता है, फिर थोड़ा कुछ पढ़ लेता है, सोने से पहले थोड़ा नाम लेता है, इस प्रकार 10-12 बार दिन में भगवान का नाम लेता होगा। तो नारद मुनि के मन में एक शंका है, इसको तो निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए, ये तो कभी कभी थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले लेता है। तो फिर नारद मुनि फिर वापिस वैकुंठ गए और विष्णु भगवान से उन्होंने जिज्ञासा किया, अरे मैंने देखा वो तो बस थोड़ा बहुत आपका नाम ले लेते, ऐसे तो निरंतर आपका नाम तो नहीं लेते, जैसे आपने कहा सततम कीर्तयन्तो माम, तो ऐसे तो नहीं होता है। तो भगवान उस वक्त एक मॉर्निंग वॉक ले रहे थे विष्णु भगवान, तो वहां एक पानी का एक घड़ा था। विष्णु भगवान ने नारद मुनि को कहा, इसको आप अपने सर के ऊपर रखो और ये जो पर्वत है इसकी एक आप क्या करो, प्रदक्षिणा करो, ठीक है, और फिर जब भी आप वापिस आओगे मुझे मिल लेना, फिर मैं आपको उत्तर दूंगा, तब तक मैं सोचता हूँ। तो नारद मुनि ने वो पानी का घड़ा सर में रख लिया, फिर उस पर्वत के प्रदक्षिणा में चले। सुबह से लेके शाम हो गई, सूर्यास्त होने वाला ही था। तो नारद मुनि विष्णु भगवान के सामने आए और कहने लगे, देखो हमने एक बूंद भी पानी नहीं गिराया। तो विष्णु भगवान ने कहा, वो तो अच्छी बात है, लेकिन बताओ कितने बार मेरा नाम लिया। तो नारद मुनि बोला, अरे ये घड़े के चक्कर में तो आपका नाम ही भूल गया मैं, इस घड़े के चक्कर में आपका नाम ही भूल गया। तो भगवान ने कहा, तो वो किसान तो अच्छा है कि नहीं, अपना कार्य भी कर रहा है। तो एक हमारे एक ऐसी कहानी हमें सिखाने के लिए कि वास्तविक में देखा जाए कि एक व्यक्ति को किसी को हमें जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ जो बताया जाता है कि वर्णाश्रम के अनुसार कैसा है कि हर एक व्यक्ति भगवान की सेवा जो है अपनी योग्यता के अनुसार कर सकता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, तो इसका अर्थ ये है कि जो 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं तो उनके गुण और कर्म के अनुसार, अगर आज एक व्यक्ति कहीं भी नौकरी के लिए चला जाएगा तो पहले तो उसका क्वालिफिकेशन देखते हैं। मुझे याद है तो जहां मैं जॉब करता था वहां एक होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट का अर्थ होता है कि बहुत सारे परीक्षाएं लेते हैं 10-20, तो उसमें देखते हैं कि आपकी योग्यता क्या है, उसके अनुसार आपको इंजीनियरिंग मेडिकल आईटी का ब्रांच दे देते हैं। अगर कोई कहेगा अरे मुझे डॉक्टर बनना है, वो कहेंगे देखो तुमको डॉक्टरी का कुछ आता ही नहीं तो डॉक्टर बन के क्या करोगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्णाश्रम क्या है कि पुराने जमाने में हम देखते हैं कि बच्चे खास करके ब्राह्मणों के क्षत्रियों के और वैष्णों के बच्चे हैं वो गुरुकुल में जाते थे। जैसे कृष्ण भगवान जहां पढ़ते थे वहां सुदामा भी पढ़ता था। तो जैसे बच्चों की पढ़ाई होती थी तो गुरुजी फिर बताते थे कि कौन क्षत्रिय बन सकता है, कौन वैश्य बन सकता है, कौन ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन आजकल क्या है कि बस पैसे का खेल है, पैसा फेंको तमाशा देखो, तो पैसा जितना दोगे उतना ही बड़ा बड़ा डिग्री मिलेगा। अभी हाल ही में भारत में एक कोई एजुकेशन मिनिस्टर पकड़े गए, उनके सब डिग्रियां डुप्लीकेट है, उनके पूरी डिग्रियां डुप्लीकेट है, कोई डिग्री है ही नहीं। लेकिन क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर है तो बस कहीं से भी ऑर्डर कर दो डिग्री आ गया। लेकिन यहां हम देखते हैं कि अपना जो मूल स्वभाव है, जैसे भागवत में कृष्ण भगवान बताते हैं कि ब्राह्मण का यानी गुण क्या होता है, सम दम तपस्चौषम क्षत्रिय सॉरी शांतिर आर्जवनम एवं च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, यानी एक ब्राह्मण के 10 गुण है। अभी इसको पूरा विश्लेषण नहीं करेंगे। तो बताया जाता है कि कृष्ण भगवान बताते हैं कि ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा, भगवान बता रहे स्वभाव द्वारा जो है उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। अभी ब्राह्मणों के क्या है गुण है, 10 गुण है, शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये ब्राह्मण के 10 गुण बताए जाते हैं। फिर उसके पश्चात जो क्षत्रिय के जो गुण है वो है वीरता, फिर उसके बाद में शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी बताते हैं कि क्षत्रिय का अर्थ होता है कि दूसरों की रक्षा करना, औरों की सबकी रक्षा करना। और उसी प्रकार यहाँ भगवद्गीता में भी कृष्ण भगवान उल्लेख करते हैं जो वैश्य है उनका क्या कार्य होता है, कृषि करना, गोरक्षा करना तथा व्यापार, ये वैश्यों के स्वाभाविक जो है वो कर्म है। फिर शूद्रों के बारे में क्या बताया जाता है कि कृष्ण भगवान बताते हैं, और शूद्रों का कर्म क्या है, कर्म वो है श्रम करना तथा अन्यों की सेवा करना, कर्म श्रम और अन्यों की सेवा करना, ये जो है शूद्रों के कार्य है। तो अपने अपने कर्म गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो हर एक व्यक्ति अपना कार्य करेगा तो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर आप देखते हैं कि समंदर में बहुत बड़े बड़े जहाज चलते हैं, ये नौकाएं चलती हैं, तो उसमें कम से कम 20-25 डिपार्टमेंट होते हैं। जो इंजन चलाने वाला होता है उसको ऊपर क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, सबसे ऊपर कैप्टन होता है ऊपर, और नीचे रसोई से लेके सब कुछ कार्य होता है एक जहाज के अंदर। अगर आप लोगों ने कभी जहाज देखा होगा, एक एक जहाज जो है 700-800 मीटर लंबे होते हैं, बहुत सारा माल लेके जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, सैटेलाइट से लेके हर एक प्रकार का कार्य होता है, वो भी एक प्रकार का एक गांव ही होता है, लेकिन उसमें ज्यादा लोग नहीं होते। तो लेकिन वहां क्या होता है कि हर एक कार्य हो रहा है, जहाज चल रहा है, तो जहाज एक जगह से लेके जो है वो दूसरी जगह हर एक चीज को जहाज लेके जा रहा है। जैसे अक्सर मैं ये रेलवे का उदाहरण देता हूं, हाँ रेलवे में क्या होता है, सबसे पहले इंजन होता है, इंजन में आगे फोकस होता है और इंजन में एक हॉर्न भी होता है, और उसके बाद में फर्स्ट क्लास डिब्बे होते हैं, उसके बाद में पैंट्री होता है, उसके बाद में सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो भी है। अभी जो इंजन है ये क्या है, ब्राह्मण के समान है। तो यहाँ भगवान के शरीर से चार अंगों से तुलना की है, भगवान का जो सर है वो भगवान, सॉरी ब्राह्मण का जो है उनको भगवान के सर से तुलना की है। तो इंजन है वो क्या करता है कि सब डिब्बों को वो लेके जाता है खींच के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4-5 फर्स्ट क्लास के डिब्बे होते हैं, और जो क्षत्रिय होते हैं वो तो आलीशान जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद में एक पैंट्री आता है, वैश्य का कार्य है, वहाँ जो भी भोजन कुकिंग वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्लास आता है, उसके बाद में थर्ड क्लास। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस रेलवे में चारों वर्ण आ गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब आ गया, लेकिन ये ब्राह्मण ही सबको वहां लेके जाते हैं। ब्राह्मण ही जो है वो सबको एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि है। तो प्रभुपाद जी भी बताते तात्पर्य में कि हर एक व्यक्ति की यानी समझने की जो योग्यता क्षमता अलग अलग होती है। तो ऐसे नहीं कि ब्राह्मण का कार्य शूद्र कर सकता, ऐसे नहीं। लेकिन आधुनिक जगत में हम देखते हैं क्लासलेस सोसाइटी कहते हैं, क्लासलेस का सोसाइटी का मतलब है कोई वर्ग नहीं है। आजकल विदेश में, भारत में भी हम देखते हैं, कहते हैं कि स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए एक जैसा कार्य होना चाहिए। आजकल स्त्रियों के लिए जो है वो बताते हैं कि पुलिस में भर्ती या मैकेनिक, पेट्रोल पंप ड्राइवर। वास्तविक में देखा जाए तो अभी एक रिपोर्ट आया था हाल ही में, जो महिलाएं जो पुलिस में कार्य करती है या डिफेंस में, तो उनके अंदर देखा जाता है कि 40% लोग आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे, क्योंकि उनका कार्य नहीं है। ऐसे देखा जाए ये कार्य उनका नहीं है, लेकिन वो लोग प्रयास कर रहे। जैसे काफी देशों में स्त्रियों को पायलट बनाने का प्रयास कर रहे, तो आज तक इसमें वो लोग जो है उनको यश नहीं मिला है, क्योंकि वो इनका इतना एक घृणित कार्य है कि वो इसके बारे में सोच नहीं सकते कि किस प्रकार हवाई जहाज इतने तेजी से उड़ाया जा सकता है। तो हालांकि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भी हम भक्ति करते हैं तो हम लोग एक स्तर पर आकर भगवान को ये जब भी सेवा करते हैं तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो विष्णु पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, वर्णाश्रम आचार्य पुरुषेन यह पुमान विष्णु आराध्य पंथ नान्य तत्तोष कारणात्। इसका अर्थ यह है कि बताया जाता है कि वर्णाश्रम के अनुसार ये है कि हर एक व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए वर्ण और कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार। इसके अनुसार एक व्यक्ति भगवान को तृप्त करता है, जब ही वर्णाश्रम के अनुसार लोग भगवान को तृप्त करते हैं तो हर एक व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में भी एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में श्लोक क्रमांक 13 नंबर, उसमें भी उल्लेख आता है, अथ पुंबिज द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विवागश। तो यहां भी यही बताया गया है कि वर्णाश्रम के अनुसार ये यहां बताया गया है कि एक व्यक्ति को अपना करते हुए करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करता है तो उसको क्या करना है, परम सिद्धि प्राप्त करना है कि भगवान को तृप्त करना है। सम सिद्धिर हरितोषणम, तोषणम का अर्थ होता है कि प्रसन्न करना। तो जब तक हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे तो कुछ मतलब नहीं। तो इसी आज इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह, बहुत देश ऐसे हैं उनके पास कोई चीज की कमी नहीं है, सब प्रगति है, लेकिन प्रभुपाद जी कर रहे थे कि बताते थे कि इनका कोई इसको कुछ लाभ नहीं है, हालांकि इन्होंने इतना सब कुछ प्रगति किया है तो इनको कुछ भगवत प्राप्ति होगी नहीं क्योंकि ये लोग भगवान का कोई भक्ति नहीं करते। तो यहां आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में फिर भगवदगीता से 9वां श्लोक लेते हैं जिसमें कृष्ण भगवान बताते हैं स्त्रियो वैश्यस्यता शूद्रा तेपि अंतिम पराम गतिम। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि स्त्रियो वैश्यस्यता शूद्रो जो है ये भी लोग जो है कोई भी निम्न श्रेणी का भी हो अगर वो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है तो अवश्य वो भगवत धाम वापिस जा सकता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि भगवत धाम जाने के लिए कोई डिग्री या कोई क्वालिफिकेशन, कोई वर्णाश्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए सिर्फ हमें भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए। तो भी रूप गोस्वामी जो है उन्होंने एक बहुत अच्छा एक पद लिखा है पद्यावली में, तो उसमें वो बताते व्याधश्च आचरणम क्यों, वो बताते हैं कि एक वैद्य थे, श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है 11वें स्कंद में। तो ये जो वैद्य थे इसको डर के सब पशु पक्षी सब भाग जाते थे और उसको देखने से उनको लगता था कि कहीं सचमुच यमराज आ गया, तो इस प्रकार ये पशु डरते थे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी भगवान ने क्या किया, भगवत धाम भेज दिया। आगे वो बताते हैं कि ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव का, ध्रुव महाराज आप देखते 5 साल के थे लेकिन उनके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा थी भगवान का दर्शन करना और जो है ब्रह्मा जी से भी बड़े बनने का उनका एक शौक था। तो भगवान ने क्या किया, ध्रुव महाराज को भी दर्शन दिया। और उसी प्रकार विद्या गजेंद्रस्य का, इसका मतलब है कि जो गजेंद्र जो थे एक जो है जानवर थे, हालांकि पूर्व जन्म में वो एक राजा थे इंद्रदुम्न थे लेकिन उनको एक श्राप मिला था एक हाथी बनने का, लेकिन उन्होंने क्या किया एक कमल का फूल भगवान को अर्पण किया। तो बस उसी से भगवान, हालांकि वो बोल नहीं पा रहे थे लेकिन उनको याद था पूर्व जन्म की स्मृति थी तो उन्होंने सिर्फ वो फूल भगवान को अर्पण किया तो भगवान ने जो है गजेंद्र का जो है उनको बचा लिया। तो उसी प्रकार कुब्जा, कुब्जा किम नो रूपम, इसका अर्थ ये होता है कि कुब्जा जो है वो ऐसे तो टेढ़ी थी तो उसका कोई रूप नहीं था लेकिन जैसे कृष्ण भगवान ने कहा अरे ये चंदन हमें दे दो तो उसने आगे पीछे सोचा भी नहीं, कृष्ण भगवान को देख के पूरा चंदन शरीर में लगा दिया कृष्ण बलराम जी ग्वाल बालों को। तो कृष्ण भगवान इससे बहुत ही प्रसन्न हो गए तो भगवान ने तुरंत उसकी हनुवटी पकड़ के उसको तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री बना दिया। ऐसे देखा जाए तो कुब्जा पूर्व जन्म में क्या थी किसको मालूम है, बलि महाराज की बहन थी ऐसे बताया जाता है। तो आगे देखते हैं उल्लेख आता है कि सुदामा, सुदामा का बताया जाता है कि सुदामा जो है ऐसे वर्णाश्रम के अनुसार ब्राह्मण था, बहुत गरीब था। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं अपनी अपनी बराबरी करते हैं। जब ही द्रोणाचार्य जो है वो किसके पास गए थे एक गाय मांगने के लिए, किस राजा के पास गए थे किसी को मालूम है, हाँ द्रुपद के पास। हालांकि द्रुपद ने कहा अरे आप मेरी बराबरी क्या कर सकते हैं, मैं तो राजा हूं, लेकिन ये दोनों क्लासमेट थे। द्रोणाचार्य ने कहा अरे तुमने बचपन में कहा था जब मैं राजा बनूंगा मेरे पास आ जाना, जो चाहिए दूंगा। तो लेकिन आप देखते कि द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगा। लेकिन आप देखते कि जब ही सुदामा कृष्ण भगवान को मिलने गए तो सुदामा को कृष्ण भगवान ने अपने खटिया पर बिठाया, उनके पैर धोए, उनकी अच्छी सेवा की। तो ऐसा देखा जाए तो सुदामा का कुछ धन कुछ भी नहीं था। तो उसी प्रकार विदुर का भी उल्लेख करते रूप गोस्वामी, वो बताते हैं कि विदुर जो है वो बताते हैं विदुरस्य वो बताते हैं कि विदुर का जो है कोई ये नहीं था, वर्णाश्रम के अनुसार वो एक दासी पुत्र था। तो विदुर को जो है आप देखते कि विदुर जो है कृष्ण भगवान को इतने प्रिय थे कि भगवान स्वयं उनके घर में गए थे, उन्होंने दुर्योधन का 56 भोग नहीं खाया। हाँ, उसी प्रकार आप देखते हैं आगे वो बताते हैं कि उग्रसेन यदुवंश के जो राजा थे उग्रसेन, हालांकि उनकी बहुत बड़ी सेना थी लेकिन राजा के उनके अंदर कोई बल नहीं था, लेकिन वो कृष्ण को इतने प्रेम करते थे, उनके प्रेम से ही कृष्ण भगवान उनके आदिन हो गए थे। तो यहाँ जो है कुछ इन्होंने रूप गोस्वामी ने उल्लेख किया है कि किस प्रकार भगवान को बताते हैं कि भक्ति तुष्टति केवल न च गुणेर भक्ति प्रियो माधव। इसका अर्थ है कि भगवान जो है सिर्फ अपने भक्ति से ही जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और उसी से भगवान जो है तुष्ट हो जाते हैं। तो अक्सर प्रभुपाद जी बताया करते थे कि हम इस इस्कॉन के द्वारा कुछ अच्छा समाज में अच्छे लोगों को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि समाज का कोई मार्गदर्शन सही तरह कर सके। तो कलयुग के अनुसार हम देखते हैं कि कलयुग में अभी शूद्र लोग राज्य कर रहे हैं, तो उनको किस प्रकार राज्य करना चाहिए, क्या नियमों को क्या बिल पास करना चाहिए वो कुछ मालूम ज्ञान है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि जैसे इस्कॉन में हम देखते कि प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका सिर्फ 40 रुपए लेके, और प्रभुपाद जी काफी लोग बता रहे थे अरे स्वामी जी वहां तो आपको पैंट शर्ट डालना पड़ेगा, चम्मच से खाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं हम वहां खुद को बदलने नहीं जा रहे, हम लोगों को वहां बदलने जा रहे। और आप देखते कि एक प्रभुपाद जी क्या करते थे, प्रतिदिन एक गार्डन में वहां शाम को 1 घंटा कीर्तन किया करते थे। तो इस प्रकार धीरे धीरे कीर्तन श्रवण करके उन लोगों का जो है हृदय परिवर्तन हो गया। और जितने भी हिप्पी लोग आते थे तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, उनको अलग अलग सेवा में लगाते थे। अगर आप देखते हैं कि हरेक के व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण है उनके जन्म के अनुसार, तो आप देखते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी है उन्होंने हरेक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की सेवा दी। और इस प्रकार उन्होंने इस्कॉन का एक जो है एक ऐसे सोसाइटी बनाई। अभी आप देखते हैं कि हरेक व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं, हरेक के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता होती है, कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होता है। आप देखते हैं कि जिनको कुकिंग अच्छा जो सीख सकते थे, जैसे यमुना माता जी है, तो उनको प्रभा जी ने कहा कि आप कुकिंग करो, कुकिंग सिखाओ, हाँ फिर भगवान के लिए ड्रेस पोशाक बनाओ। तो यमुना माता जी का आप देखते कि उनका एक कुकिंग बुक जो है वर्ल्ड फेमस है अभी भी। और उन्हें जो है एक माता जी जो उनको अच्छा पेंटिंग आता था, तो उनको उन्होंने कहा कि आप पेंटिंग करो। तो इस्कॉन के आप जितने भी पेंटिंग देखते हैं कि ये जो है जिनको कुछ ज्ञान नहीं था, प्रभुपाद जी ने उनको सिर्फ बताया कि कृष्ण मुरली बजा रहे, यमुना जी है, हाँ उनके ग्वाल बाल है। तो सिर्फ उन्होंने वो चित्र अपने मन में उतार के फिर उसका उन्होंने पेंटिंग किया, अगर आप देख सकते हैं। फिर आगे किताबों का छपाई करना, किताब वितरण करना, संकीर्तन करना, मंदिर का अभी हाल ही में जो सुरभि जो थे प्रभुपाद जी के शिष्य जिन्होंने ये मंदिर बंबई का मंदिर बनाया, तो उन्होंने कहीं आर्किटेक्चर का कहीं ये नहीं किया, इस मंदिर का कहीं डिजाइन चुरा के नहीं लाया, तो उन्होंने खुद इस मंदिर का डिजाइनिंग उन्होंने खुद किया। तो यहाँ प्रभुपाद जी अंत में यही निष्कर्ष करते हैं कि अगर एक व्यक्ति गुरु का आश्रय लेता है, क्योंकि गुरु जो है एक व्यक्ति का बीज जानता है, बीज का अर्थ होता है कि एक गुरु जानता है कि ये व्यक्ति कहाँ फिट हो सकता है, एक गुरु जो है ये समझ सकता है कि ये शिष्य किस प्रकार की अच्छी सेवा दे सकता है। प्रभुपाद जी के समय जब भी प्रभुपाद जी लंदन में थे, वहां ये जॉर्ज हैरिसन करके थे, हाँ उस समय के बहुत ही बड़े सिंगर थे, तो काफी लोग उसको कहते थे अरे आप सर मुंडा के आप ब्रह्मचारी बन जाओ, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको कभी कहा नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा आप गाते रहो लेकिन आपको हम गाने का स्क्रिप्ट बताएंगे किस प्रकार गाना गाना चाहिए। तो अभी आप देखते हैं उसके गाने जो है जॉर्ज हैरिसन के गाने आज भी वर्ल्ड फेमस है और उनको ये जब गाना किस प्रकार गाना चाहिए वो प्रभुपाद जी ने उस समय बताया था और उस व्यक्ति ने प्रभुपाद जी के लिए बहुत सारा जो है यानी जैसे आप लंदन कभी कोई जाएंगे तो आप देखते हैं कि बहुत बड़ी संपत्ति प्रभुपाद जी को उन्होंने इस्कॉन का मंदिर बनाने के लिए दिया। तो इस प्रकार जब भी एक व्यक्ति गुरु के पास जाता है और गुरु से अनुरोध करता है उस प्रकार क्या हो सकता है कि गुरु उनको बता सकते भाई एक व्यक्ति किस प्रकार का कार्य कर सकता है। तो यहाँ प्रथु महाराज का ये उल्लेख उनका ये कहना है कि एक व्यक्ति को अपने योग्यता के अनुसार क्या करना चाहिए भगवान की सेवा देनी चाहिए तो उस प्रकार एक व्यक्ति निश्चय ही भगवत धाम जा सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रश्न कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी शिव जी बड़े बड़े लोग भगवान की सेवा करते हैं उनके तुलना में हम लोग क्या है कोई जरूरी नहीं ऐसे कोई जरूरी नहीं कि इसके लिए हमें ब्रह्मा शिव जी भी बनना चाहिए। जैसे अक्सर आप देखते हैं कि वृंदावन की लीलाओं में उल्लेख आता है कि अगर कृष्ण भगवान के वृंदावन के लीला में आप देखते हैं कि कृष्ण भगवान एकमात्र हर एक व्यक्ति के लिए कृष्ण भगवान केंद्र बिंदु है चाहे वो चर है अचर जीव है। तो भगवान के कृष्ण भगवान के लीला में हम देखते हैं कि वृंदावन के भगवान के जो प्रकट लीला है तो भगवान के जो वृंदावन के लीला है वो एक होती है प्रकट लीला एक अप्रकट लीला होती है एक नित्य लीला होती है और एक है नैमित्तिक लीला। तो नैमित्तिक लीला में आप देखते हैं कि भगवान वृंदावन से मथुरा द्वारका जाते हैं भगवान की नित्य लीला गोलोक वृंदावन में चलती है और प्रकट लीला का मतलब है जब भी भगवान यहाँ रहते हैं भगवान लीला करते हैं उसको कहते हैं प्रकट लीला। अभी जो लीला चल रही है उसको कौन सी लीला कहते हैं अप्रकट लीला चल रही है लेकिन हमारे आंखों में उतना प्रेम का अंजन नहीं है ठीक है इसलिए हम वो देख नहीं सकते। तो जब भी कृष्ण भगवान की प्रकट लीला चल रही थी तो आप देखते कि सुखदेव गोस्वामी जो है श्रीमद भागवतम में क्या उल्लेख करते हैं कि जितने भी ब्रजवासी थे गोपियां गोप ग्वाल बाल वो सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए संतुष्टि के लिए सब कुछ करते थे। वो उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद में जितने भी पेड़ थे लताएं थे वो तो 12 महीने फलों से फूलों से लदे रहते थे और जहां से कृष्ण भगवान गुजरते थे ऐसे पेड़ झुक जाते थे कहते थे कि हमारा फल ले लो और फूल भी भगवान की तरफ मुड़ जाते थे। जैसे आपने एक फूल का नाम सुना होगा सूरजमुखी हाँ वो जैसे सूरज घूमते हैं पूरब से पश्चिम की तरफ वो भी ऐसे ही घूमता है सूरज की तरफ ही वो देखता रहता है। तो उसी प्रकार आप देखते हैं कि ये है बादल है कृष्ण भगवान को उल्लेख नहीं आता है कि कृष्ण भगवान छाता लेके जाते थे गोचरण के लिए नहीं एक लपुटी का या मुरली का उल्लेख आता है लेकिन ये बादल क्या होते थे कि भगवान के सर के ऊपर आ जाते थे। उसी प्रकार सूरज चंद्रमा जितनी गर्मी सर्दी देनी है वो देते थे। तो आगे उल्लेख आता है जितने भी पक्षियां हैं भौरे हैं गाय है वो लोग आतुर रहते थे कि कृष्ण कभी घर से निकलेंगे। आपने कोई पेंटिंग देखा होगा कि कृष्ण भगवान सुबह घर से निकलने से पहले सब चिड़िया वगैरह वहां तोते आके तो उनको बाहर बुलाते थे चलो कन्हैया जी अभी टाइम हो गया। तो भगवान की जो अष्टकलीय लीला हम देखते हैं कि जितने भी शांत रस में जितने भी ये है भगवान के लीला में तो ऐसी एक लीला आती है जिसमें एक बार गोपियों को कृष्ण भगवान ने कहा कुछ खिलाओ तो गोपियों ने कहा किसमें खाओगे हथेली से तो गिर जाएगा कुछ आपके पास बर्तन है। तो वृंदावन में भगवान की लीलाओं का जो है ज्यादा करके कदम पेड़ से ज्यादा लीलाओं का उल्लेख आता है। तो कृष्ण भगवान ने कदम पेड़ की तरफ देखा तो कदम के जो पेड़ के जो पत्ते थे वो क्या बन गए डोना बन गए। आजकल तो हमें फैक्ट्री में उसको हीट दे के डोना बनाना पड़ता है लेकिन उस समय हम देखते हैं चाहे पेड़ पशु कुछ भी हो वो क्या करते थे कि भगवान की इच्छा के अनुसार वो भगवान के प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते थे। तो यहाँ जो प्रथु महाराज का जो उल्लेख है तो वो भी बता रहे कि एक व्यक्ति को यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए यथा योग्य तो उसके अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर भी जो है उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे है। तो एक भजन में वो लिखते मानस देह गेह जे किचु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। यहाँ प्रथु महाराज वही उल्लेख कर रहे हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति को अपना मनसा कर्मणा वाचा से भगवान की सेवा करनी चाहिए। फिर आगे और उनका और एक भजन आता है, उसमें वो उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार हमें भगवान की सेवा में सब कुछ वो जो है वो लगाना चाहिए, भक्ति विनोद ठाकुर उल्लेख करते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनका भी जो टीका है तो उसमें ये बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवत धाम प्राप्त कर सकता है जब एक व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की किसी को ये प्रश्न है, टीका है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।